ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Duties, dharma, executed by men, regardless of occupation, are only so much useless labor if they do not provoke attraction for the message of the Supreme Lord.
Dharmasanushita pungsa vishakshena kathasuja notpadaye jadirati sramaye vaikeyo. Dharma. Dharma ka arth hota hai jo apna apna kartavya. Pahle bhi aap logo sunaya tha, dharma ka arth ye nahi hai jo कोई हम एक प्रकार चीज को मान लिया वो हमारा धर्म है. जैसा हिंदू धर्म है, मुसलमान धर्म है, हम मान लिया बस काम खत्म हो गया. नहीं, धर्म का अर्थ होता है जो इंग्लिश में जैसे दिया गया है कर्तव्य, करने ही पड़ेगा, छोड़ नहीं सकेंगे. जैसा नौकर है मालिक का हुक्म सुनना ही पड़ेगा, उसका कर्तव्य है, नहीं तो नौकरी नहीं टिकेगा. इसी प्रकार जीव का जो धर्म है, चैतन्य महापुरुष बताए और भगवान श्री कृष्ण भी बताए, ममैवांश जीव भूत. जीवात्मा जो है वो हमारा अंश स्वरूप, और अंश स्वरूप कैसा हुआ, अंशर अंशी. जैसा हमारा शरीर है, आपका शरीर है, और शरीर का अलग अलग विभाग है, लिम्स, पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जैसा हाथ है, पैर है, आंख है, कान है, अलग अलग विभाग. और वो विभाग का काम क्या है, आंख, आंख का कर्तव्य है देखना, कान का कर्तव्य है सुनना. आंख अगर नहीं देखता है तो उसको अंधा बोला जाता है, यानी नॉट इन नॉर्मल कंडीशन, स्वाभाविक अवस्था नहीं है. आंख का काम ही है देखना. आंख अगर नहीं देख सकता है तो वो स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक बीमारी. तो देख करके शरीर को सेवा कर, आंख का काम है देख करके हम चलने चाहता है शरीर, आंख देखता है जाए इधर से चलिए, पैर चलता है, अलग अलग शरीर का जो भाग है अलग अलग कर्तव्य है. इसका नाम है धर्म, यानी आंख का धर्म है देखना, पैर का धर्म है चलना. इसी प्रकार जीवात्मा भगवान कहते हैं कि ममैवांश जीव भूत. ये जीवात्मा जितने हैं हम लोग, भगवान कहते हैं हमारा अंश है. तो जैसा शरीर का अंश, हाथ पैर आंख, अलग अलग सब सेवा कर रहे हैं, सेवा में नियुक्त है, इसी प्रकार जीवात्मा का कर्तव्य है भगवान की सेवा में नियुक्त रहना. ये कर्तव्य ये अंश है ना. भगवान जैसे चाहते हैं एक एक देवता से एक एक काम लेता है, इसी प्रकार एक एक जीव से एक एक काम लेता है. तो उसका नाम है भक्ति. आनुकुल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तमा. भक्ति का अर्थ होता है कि एक एक जीव का एक एक कर्तव्य है भगवान का तरफ. भगवान जो चाहते हैं तुम ये काम करो, वो सेवा है। जैसे अर्जुन को भगवान बताया तुम लड़ाई करो, तो लड़ाई करना ही उनका कर्तव्य, उसका नाम है भक्ति। अनुकूल न कृष्णानुशीलनम, अनुकूल भाव से, प्रतिकूल भाव नहीं, जो कृष्ण बताए उसको करो। भगवान ये चाहते भी हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं, मैं जो बोलता हूं उसको सुनो, हमारा चरण में शरणागत, इसका नाम है धर्म। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, और सब धर्म का नाम जैसा चल रहा है वो सब जुआचुरी, असल धर्म ही है यह अनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम, यह असल धर्म। जैसा भगवान बताते हैं ऐसा करो, भगवान बताते हैं मन मना भव मत भक्तो मत जाजी मांग नमस्कुरु, वो तुम्हारा धर्म है, हमारा धर्म है। भगवान खुद बता रहे हैं कि सब समय हमारा चिंतन करो, मन मना भव मत भक्तो, हमारा भक्त बन जाओ, हमको नमस्कार करो, हमको पूजा करो, ये भगवान बताते हैं। वो करना ही हमारा धर्म है, और जो काम हमारा है वो सब अधर्म है। इसलिए भागवत में कहते हैं धर्म प्रोज्जित कोई तब अत्र, जो ये जो चीटिंग छलबाजी धर्म है, यानी भगवत सेवा छोड़ करके जो कुछ धर्म का नाम में चल रहा है ये सब कोई तो चीटिंग है, असल धर्म ही है। तो हम लोग अपना अपना सब धर्म बना लिया है, तो इसलिए बता रहे हैं कि धर्मस्य अनुष्ठित पुंसा, अपना अपना सब ड्यूटी हम लोग सोच लिया, ये हमारा ड्यूटी। अच्छा अपना ड्यूटी करो, परंतु आखिरी में यदि अपना ड्यूटी जो है उसको करके भगवत भक्ति हुआ तो तुम्हारा ड्यूटी ठीक हुआ, और नहीं हुआ तो समय वही केवलम, केवल परिश्रम हुआ और कुछ नहीं, लाभ हुआ परिश्रम, लाभ ना होइल इथे घोटिल जोंजा, ना नरोत्तम दास ठाकुर। ये जो हम धर्म बना लिया है शरीर का, इसमें हमारा कुछ लाभ नहीं हुआ, केवल जंजाल हुआ, बस यही बात है। हम लोग जो तात्कालिक धर्म में फंसे हुए हैं और भगवान को भूल गया है, इसमें हमारा लाभ यही है, वही फंसे ही रहेंगे और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। एक जन्म का बाद और एक जन्म और एक जन्म, वही वही काम में फंसा रहा है शरीर का धर्म। इसलिए कहते हैं जो अब पूछना चाहिए धर्म क्या चीज है। धर्म का अर्थ होता है क्लियर स्पष्ट, भगवान बता रहे हैं यही धर्म है कि माम एकम, एकम ये नहीं है। जैसे मायावादी लोग कहते हैं कि कोई कोई भगवान का रूप जाजन करो फल एक ही होगा, नहीं भगवान ये बात नहीं बोलते, भगवान का रूप सभी है, आप भी भगवान का रूप है, हम भी भगवान का रूप है, परंतु भगवान का एक खास रूप है, वो रूप को भजन करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं माम मुझे एकम, एक कृष्ण रूप, कृष्ण कृष्ण का अर्थ होता है विष्णु तत्व, रामादि मुत्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतार मकरत भुवनेशु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परम पुमान जो, कृष्ण जो है स्वयं परम पुरुष है। ये ब्रह्म संहिता में है और भी बताया ये गोविंदमादि पुरुषम तमाम ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, सब कारण के कारण मूल कारण है कृष्ण, अहम आदिर ही देवाना, भगवद गीता में भगवान खुद बता, मत्त परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय, मुझसे बढ़कर के और कोई परतत्व है। तो भगवान खुद बता रहे हैं, हमको लेना चाहिए, उनको समझना चाहिए। और एक दफे हम भगवान कृष्ण को समझ गया, भगवान कृष्ण को समझना कोई सरल बात नहीं है, बहुत मुश्किल है, परंतु यदि साधु सत्संग द्वारा भगवान का विषय कुछ हम लोग समझ गया तो हमारे जीवन सफल हो गया, और नहीं तो श्रमय वही केवलम, केवल परिश्रम। खूब गंगा स्नान किया, खूब तिलक लगाया, खूब तीर्थ स्थान में भ्रमण किया और पूजा पाठ जाग यज्ञ सब कुछ किया, बाकी भगवान को नहीं समझा, तो ये सब परिश्रम, इसमें कोई लाभ नहीं। लाभ है यदि भगवान कृष्ण को कोई समझ सके, इसमें ही लाभ है। आराधित यदि हरि तपसा ततः किम, यदि भगवान कृष्ण को कोई समझ गया फिर उसका तपस्या का क्या जरूरत, उसका काम बन गया। नाराधित यदि हरि तपसा ततः किम, और खूब तपस्या किया, खूब जाग यज्ञादि किया, बाकी भगवान कृष्ण को नहीं समझा, तो तुम्हारा तपस्या के क्या फल है। अंतर वही यदि हरि तपसा ततः किम, यदि ये बात तुम सीख गया जो अंतर में बाहर में सब समय केवल कृष्ण का दर्शन होता है, तो फिर तुम्हारा और तपस्या करने की क्या जरूरत है, तपस्या की आखिरी बात यही है। अन्नांतर वही यदि हरि तपसा ततः किम, और यदि सब तपस्या करते हुए भी भगवान को अंदर में और बाहर में सब समय दर्शन नहीं किया, तो फिर ये तपस्या का क्या मतलब, यही शास्त्र का सिद्धांत है। भगवद गीता में यही बताया है, जो भगवान को समझ गया है उसको और कोई समझने का बाकी नहीं है। जस्मिन विज्ञाते सर्वमेदम विज्ञातम भवन्ति, वेद का यही उपदेश है। तो एक व्यक्ति है जिसको समझने से सब बात समझ में आ जाता है। इसीलिए कहते हैं जो धर्म जाजन हम लोग करते हैं, बाकी धर्म जाजन कर करके विश्वक्सेन कथा सुजत, विश्वक्सेन भगवान का और एक नाम है, वो भगवान की कथा में यदि रुचि नहीं हुई तो समय वही के धर्मस्थानुष्ठित पुंसा विश्वक्सेन कथा नोत्पादय दृति, यदि धर्म जाजन करने से भगवान के कथा में रुचि होगी, ये फल है धर्म का। ये सब आगे बताएंगे कि धर्म का अर्थ क्या है। धर्मस्य झाप वर्गस्य नाथ अर्थाय उपकल्पति नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामलाभाय स्मृत कामस्य नेन्द्रिय प्रीति जीवे तो जावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा न जस्तेह कर्म भी, ये सब बताएंगे। तो हम लोग ज्यादातर धर्म जो मनुष्य है, जो जानवर है उसको तो धर्म नहीं, मनुष्य का विषय है, शास्त्र हुआ है मनुष्य के लिए, जानवर के लिए नहीं। जानवर तो केवल भोकेगा और कुछ काम नहीं। जो मनुष्य है उसके लिए भगवान सब शास्त्र बना है, चैतन्य चैतामृत में है जो अनादि बहिर्मुख जीव कृष्ण भूली गेला, जीव जो है न जाने कब से भगवान को भूल गया, अनादि बहिर्मुख केवल बाहरी चीज में उसका आकर्षण है, भगवान को जानता है। ये कब से शुरू है, क्योंकि भगवान से जीवात्मा से बड़ा घनिष्ठ संपर्क है, भूलना तो उनके उचित नहीं है, भूलते हैं कभी कभी, हम लोग भी भूल जाते हैं जैसा काम, इसी प्रकार जब भूल जाता है और कब से भूला है उसको पता भी नहीं चल रहा है, इसलिए कहते हैं अनादि अनादि बहिर्मुख जीव कृष्ण भूली गेला, अतः कृष्ण वेद पुराण करिला। ये वेदादि शास्त्र जो बनाया गया है, व्यासदेव व्यासदेव भगवान का अवतार है, नारायण का अवतार है, ये कलयुग जीव भगवान को भूल गया और तकलीफ उठा रहे हैं, पहले विदा दी कोई लिखने का जरूरत नहीं। मनुष्य इतना मेधावी होते थे कि एक दफे गुरु का मुखारविंद से विदादी शब्द को सुनने से उसको याद रखा, लिखने का कोई जरूरत नहीं। ये कलयुग होने वाला था, इसीलिए व्यासदेव सब लिखा। इसके व्यासदेव का नाम है वेदव्यास। पहले श्रुति, इसका नाम है श्रुति, सुन करके ही शिष्य लोग सीख जाता। तो इसीलिए व्यासदेव जो है अतएव कृष्ण कृष्ण द्वैपायन व्यास, व्यासदेव का और एक नाम है कृष्ण द्वैपायन। इसलिए अतएव कृष्ण वेद पुराण, कृष्ण का अर्थ होता है जो भगवान का अवतार भी बोलिए, और नहीं तो उसको नाम ही है कृष्ण द्वैपायन। ये सब वेदादि शास्त्र बना है, इसको उपयोग करना चाहिए। मनुष्य जीवन है क्या, और विशेष करके जिसको भारतवर्ष में जन्म हुआ है उसके लिए तो बहुत ही उचित है। वो भारतवर्ष में जन्म लिया और वेदादि शास्त्र का ध्यान नहीं किया, उसको समझा नहीं, तो ऐसा जन्म विफल करने कर दिया, कोई कहने का बात वृथा जन्म हुआ। भारत भूमि में जन्म लेने का एक बहुत भारी उद्देश्य है कि ये वेदादि शास्त्र पढ़ करके वो समझ जाए जो क्या है भगवान, क्या है भगवान से उसका क्या संपर्क है, और वो संपर्क से हमको क्या करना चाहिए, ये सब वेदादि शास्त्र में निर्देश है, उसको करना चाहिए। इसे चैतन्य महाप्रभु बता रहा है कि भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइल जा, ये भारत भूमि में जिसको मनुष्य जन्म, गधा नहीं सुअर नहीं मनुष्य, उसको जन्म सार्थक करना चाहिए। हाँ, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइल जा, जन्म सार्थक करी, जन्म सार्थक को उनको मौका है। हाँ, भारत भूमि में घर घर में गीता है, भागवत है, बाकी कोई पढ़ता नहीं, कोई जानता नहीं, कोई सुनता, इतना गधा हो गया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु विशेष करके कहते हैं कि भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइल जा, जन्म सार्थक करी का अर्थ होता है जन्म को पूर्ण बनाओ, संपूर्ण बनाओ। तो संपूर्ण बनाने का तरीका क्या है, ये वेदादि शास्त्र पढ़ो अच्छी तरह से समझो, तभी तो जीवन सफल होगा। जासूसी लिटरेचर पढ़ के क्या लाभ होगा, नहीं उसी में आ सकती है, उसी में आ सकती है। तद वायस तीर्थम भागवत में बताए, न तद बचस चित्त पदं हरेर जस प्रगनीत कर ही चित तद वायसम तीर्थम। जिस शास्त्र में भगवान की गुणगान लिखा नहीं है, वो जो शास्त्र है साहित्य है, वो वायस तीर्थम कौए का आनंद का स्थान है। कौए कौए जितना झूठा चीज खराब चीज फेंक देता है रास्ता में, उसी में कौए लोग आके आनंद लेते हैं। तद वायसम तीर्थ, और जिस शास्त्र में भगवान का गुणगान लिखा है वो हंस का लिया है, परमहंस हंस हंस राजहंस, वो स्वच्छ जल में रहता है जहाँ पद्म फूल और बड़ा वातावरण बड़ा सुंदर, वहाँ जाके वो हंस लोग रहता है, और कौएल होता है जहाँ सब खराब चीज फेंक दिया जाता है उधर कौए जाते हैं। ये पक्षी में भी विभेद है, कोई हंस है कोई कौए है। इसी प्रकार ये जो शास्त्रादि है वेदादि शास्त्र में जो ध्यान नहीं देते हैं, और इधर उधर का न्यूज़पेपर जासूसी सब खबर पढ़ते हैं, वो सब कौए हैं। राजहंस जो होगा ये सब शास्त्र का अनुशीलन कर, परमहंस राजहंस ये उचित है। ये भारतवर्ष में बहुत जल्दी ये काम हो सकता है, भारतवर्ष में अभी तक पंडित है और भक्त भी है जो कि शास्त्र को समझता है समझा सकता है, उसको पास जाए शास्त्र का अभिलाष समझे और जीवन को सार्थक करे करके खाली बैठ नहीं रहे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जन्म सार्थक करी, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो अपना जीवन सार्थक कर लो, फिर परोपकार करो, दुनिया को सुनाओ। दुनिया में तो हम तो देख रहे हैं सारा दुनिया में केवल आहार निद्रा भय, मैं तो नहीं जानते, तुमको सुनाना चाहिए। ये भारतवर्ष का काम है, जो पृथ्वी का आगे कोना कोना में सब चले जाए, बड़े बड़े विद्वान साधु भक्त लोग जाके इनको सुनाए, ये सुनता है, ये सुनने लेके बहुत आग्रह इनका है, तभी तो आया। ये इधर आपका स्विंग मशीन देखने को नहीं आया, जब इंडस्ट्री स्विंग मशीन बनाया, साइकिल बनाया, वो तो 200 बरस पहले ये लोग बनाया। वो रास्ता में जाने से अब कभी कोई माननीय व्यक्ति नहीं होंगे, जब इंडस्ट्री में बड़ा हो गया, तुम क्या इंडस्ट्री करो, वो 100 बरस आगे है, उसको अगर भगवत भक्ति दोगे तभी तुम्हारा सम्मान बनेगा, वो चीज उधर है ही नहीं, वो मशीन बना के उधर बड़ा नहीं हो सकोगे। इधर बना सकते हो बोनगाय सियाल राजा, जंगल में सियाल भी वो सिगाल भी राजा हो जाता, वो अलग चीज है। यदि भारतवर्ष का सम्मान चाहते हैं तो ये चैतन्य महाप्रभु का जो मिशनरी है, जो भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हईल जा, जन्म सार्थक करी करो परो उपकार, ये भारत का मिशन होना चाहिए। उधर से नकल करके और स्काई स्क्रबर बिल्डिंग बना करके इसमें आप उससे बड़ा नहीं हो सके, वो और आगे बहुत बड़ा। इसीलिए ये कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट है, जब असल में भारत की जो असली कृष्टि है, सभ्यता है, भगवत भक्ति और भगवत गीता मौजूद है, कोई मुश्किल नहीं है। भगवत गीता में सब बात अच्छी तरह से लिख दिया गया है, उनको अच्छी तरह से समझाओ, खुद भी समझो, अपना जीवन का सार्थक करो और परोपकार करो, सिंपल थी, कोई मुश्किल नहीं है। और चैतन्य महापुरुष बता रहे हैं कि आप लोग सब गुरु बन जाइए। हाँ, कहते गुरु का बहुत जरूरत है, क्या सारा दुनिया सब मूर्ख है, गधा है, उसको सिखाने के लिए बहुत गुरु का जरूरत है। भाई वो गुरु नहीं है जो अनशन बात बता करके उधर के मांस खाने के लिए सीख आया और इधर सन्यासी बने, वो गुरु नहीं। गुरु तो जैसा शास्त्र में बताया है, जैसे चैतन्य महापुरुष बताते हैं कि आमार आज्ञा गुरु हुई, मैं जो बता रहा हूं उस आज्ञा को पालन करके गुरु हो, ऐसा ना भूमि फोर गुरु नहीं, आज्ञा पालनकारी गुरु, जो कि सुपीरियर ऑथोरिटी का ऑर्डर मानते हैं वो गुरु है, और अपना कुछ मैन्युफैक्चर करके गुरु नहीं हो सकता, वो गुरु नहीं। समित्पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम शाब्दे परेच निष्णातम ब्रह्मनी उपसमास, ये गुरु का लक्षण है। तद्विधि प्रणिपातेना परिप्रश्नेना सेवया उपदक्षन्ति तद् ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शी, जो तत्वदर्शी है वो गुरु है, जो तत्व को देखा ऐसा भूमि फोर ने। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्ण भगवान और कृष्ण भी बोलते हैं वही एक ही बात, जय दंग परमम गुह्यम मत भक्ता मत भक्ति सो विदास न चत्मात् मनुष्य सुकश्चित में प्रिय कृत। तो पूर्व पूर्व आचार्य का ये भगवान का जो बातें हैं उसको यदि प्रचार करे तभी वो गुरु है, नहीं तो ऐसा गुरु नहीं हो सकता। तो चैतन्य महापुरुष कहते हैं इसीलिए जे आमार आज्ञा गुरु है या तारो है देश, हमारी आज्ञा से मैं जो बोल रहा हूं, कृष्ण चैतन्य महापुरुष क्या बोल रहे हैं, वही जो भगवान बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण बोलते हैं मानेकं शरणं व्रज, और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं जो कृष्ण का भजन करो, हरे कृष्ण का नाम जाप करो, ये कृष्ण का भजन, कोई फर्क नहीं है। और चैतन्य चैतन्यता और खास करके बताते हैं हमारा गए गुरु हैया तारो यही देश, जारे कहो जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। ये परंपरा से चैतन्य महाप्रभु कोई नई बात नहीं बोल रहा, वो कहते हैं कि कृष्ण का जो उपदेश है उसको बताओ सबको, जारे देखो तारे को, कहीं भी किसी को देखो। हाँ तो ये कोई मुश्किल है क्या? यदि ये प्रत्येक व्यक्ति ये कहने को शुरू करे तो देखो जी भगवद गीता में भगवान चाहते हैं कि सब कोई उनका चरण में शरणागत हो जाए, इसलिए आपको मैं बोल रहा हूं आप भी हो जाएगी, बस आप गुरु हो गए, कोई मुश्किल है? कृष्ण उपदेश जो कृष्ण बोल रहा है उसी को बोलिए, आपको कोई मैन्युफैक्चर करने नहीं पड़ेगा। हाँ जो कृष्ण बोल रहा है जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, तो सबको लिए उचित है। जैसा चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, जैसा कृष्ण बताते हैं, इसी प्रकार कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट को खूब दुनिया में प्रचार करना चाहिए। और नहीं तो जो कुछ हम लोग कर रहे हैं वो केवल परिश्रम है, उसमें कुछ लाभ नहीं। तो धर्मस्थानुष्ठित पुंसान विश्वास न कर, रुचि अपना रुचि बढ़ाइए और दूसरे को रुचि संपन्न कराइए। हाँ ये शास्त्र का निर्देश है, सबको मिल करके सबको समझाए कि भाई कृष्णास्तु भगवान स्वयं, कृष्ण जो असल भगवान है वो कृष्ण है, कृष्णास्तु भगवान स्वयं, वो चाहते हैं जो उनका चरण में आप लोग सब शरणागत हो जाइए और मैं भी उनका वृत्त और उनका जो संवाद है उसको बहन करके पियन कैसे आपको पास आ करके दंते निधाय तिनकं, ये बड़े बड़े साधु लोग यही कहते हैं दंते निधाय तिनकं पदयो निपत्य। हाँ हम अपना मुंह में तिनक ग्रहण करके बहुत नम्रता से और बहुत खुशामदी करके आपको चरण में एक निवेदन कर रहा हूँ, ये प्रचार जो विषय। तो हाँ जो भद्र व्यक्ति होगा वो सुनेगा, अच्छा भाई बोलो तुम इतना दीनता से नम्रता से कुछ चीज बोलने को चाहते हो तो बोलो, क्या बोलने को चाहते हो? तो बोलना है कि हे साधव आप तो बहुत साधु है, आप बहुत जानने वाला है सुनने वाला है, ये हमारा निवेदन है सकलों में वह बिहाय दुरा, जो कुछ आप सीखे हुए हैं उसको फेंक दीजिए, उसको दूर में फेंक दीजिए, सकलों में वह बिहाय दुरा। फिर हमको क्या करना है? चैतन्य चंद चरणे कुरुता अनुराग, जो चैतन्य महाप्रभु जैसे बताते हैं उसका आप करिए, ये प्रचार प्रचारक का काम है। प्रचार कलिकाल में ये झगड़े का अड्डा है, ऐसा ज्यादा जबरदस्ती बोलने से बिगड़ जाए, उसको बहुत खुशामदी करके जो आपको पैर में गिर करके और खुशामदी करके और दंत में तीर्ण ग्रहण करके एक निवेदन कर रहा हूं, जो आप बड़े साधु है बहुत सीखे हुए हैं कृपा करके सब कुछ भूल जाइए, केवल चैतन्य महाप्रभु जैसे बताए हैं ऐसे सुनिए। वो क्या बताए हैं ना, ओए जारे देखो तारे कहो कृष्ण को, जिससे आपसे मुलाकात हो, बाजार में हो, घर में हो, हाट में हो, और रेल में हो, एरोप्लेन में है, देखो जी ये भगवद गीता की वाणी है सर्वधर्म मान, तो आप ये काम कीजिए, हरे कृष्ण बोलिए, बस अब गुरु बन धर्म स्थान स्थित पुंसान विश्वास न कथा सुन। और भी एक धर्म का विषय बोलना है, धर्म का अर्थ होता है ड्यूटीज, तो ड्यूटीज एक एक व्यक्ति का एक एक ड्यूटी होता है, जैसा पहले आप लोग को सुना है। तो वास्तविक मनुष्य समाज में चार विभाजन होना चाहिए, चातुर्वर्ण मया सृष्टि गुणकर्म विभाग, ये होना ही चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण कौन है? जिसका दिमाग बहुत अच्छा है और प्रैक्टिस किया है, तपस्या किया है, सत्य सम दम तिथि का आर्जव ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभाव, ये सिखाना चाहिए। एक क्लास ऑफ मैन देर मस्ट बी ब्राह्मण, नहीं तो सोसाइटी को कौन गाइड करे? सब शूद्र हो गया तो कौन गाइड करे? हाँ, कलयुग में तो यही मुश्किल है, कलौ शूद्र संभव, कोई ब्राह्मण नहीं है, कौन सिखाएगा? ब्रेन नहीं है, शूद्र है पैर और ब्राह्मण है हेड और क्षत्रिय है बाहु और वैश्य है पेट। जैसा शरीर में चार विभाजन है, इसी प्रकार समाज का चार विभाजन होना चाहिए और सबसे परस्पर कोऑपरेशन सहयोग होना चाहिए तो परफेक्ट सोसाइटी। जैसा आपका हमारा ब्रेन है, पैर है, हाथ है, पेट है, ये अगर सहयोग करे तो शरीर सुस्त रहता है, सब काम ठीक ठीक चलता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि चातुर्वर्ण मया सिस्टम, ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब आजकल का विचार है, सब उड़ा दो, केवल शूद्र ही शूद्र ही रहो, उसमें कुछ लाभ नहीं। ये शूद्र लोग जो गवर्नमेंट में चला गया है तो ये क्या गवर्नमेंट चला है? शूद्र क्या जाए, तो छत्री चाहिए। हाँ, इसलिए दुर्दशा, ये जो चार विभाजन है धर्म, इसका नाम है वर्णाश्रम धर्म। हम लोग अभी नाम दिया है हिंदू, हिंदू नहीं, हिंदू तो मुसलमान का दिया नाम है, असल में शास्त्रीय नाम है वर्णाश्रम धर्म, हिंदू धर्म नहीं, वर्णाश्रम, चार वर्ण चार आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, ये आठ चीज अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज भाव से चलाना चाहिए। तो कलयुग में ये भी असंभव हो गया और ठीक ठीक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मिलता नहीं, इसलिए कलयुग में भगवान शास्त्र में एक ही निर्देश दिया है कि तुम चाहे ब्राह्मण हो, शूद्र हो और क्षत्रिय हो, जो कुछ हो, असल में तुम्हारा काम है भगवान को संतुष्ट करना, ये असल काम वर्णाश्रम विभाग। हाँ, ये नैमिषारण्य में बड़े बड़े ब्राह्मण पंडित और ऋषि लोग को विचार में ये स्थिर हुआ है। अतः पुण भी द्विजस श्रेष्ठ, ये शुद्ध गोस्वामी बताया, जो देखो जी आप लोग तो सब द्विजस श्रेष्ठ है, बड़े बड़े ब्राह्मण सब इधर उपस्थित है, तो शास्त्र का अनुसार ये निर्दिष्ट है, अतपुंग भी द्विजस श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग, कोई वर्णाश्रम को बात किया है, चार वर्ण और चार आश्रम, तो वर्णाश्रम विभाग सानुष्ठित धर्म से संसिद्धि हरितोषण, वही बात इधर भी है, जो चाहे ब्राह्मण हो ये, चाहे ब्रह्मचारी हो ये, चाहे शूद्र हो ये, चाहे गृहस्थ है, ये जो कोई सूर्य, असल आपका काम है संग सिद्धि। यदि आप सिद्धि प्राप्त करने को चाहते हैं, संग सिद्धि हरितोषण, भगवान को संतोष करने, तो कलयुग में ये जो विभाजन है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ स्ट्रिक्टली होना बहुत मुश्किल है, इसलिए एक काम सबके लिए उचित है जो हरितोषण, हम भगवान को संतुष्ट हो, तब आपको सिद्धि होगी, संग सिद्धि हरितोषण। तो भगवान कलयुग में बड़ा सरल भाव से संतुष्ट हो सकेगा, क्यों, क्या किस तरह से, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम इव केवलम कलौ नास्ते इव नास्ते इव नास्ते इव गतिरन्न। इसलिए शास्त्र का निर्देश अनुसार हम लोग तो बहुत गिरे हुए हैं, इसलिए हरे नाम भगवान का नाम, ये नहीं है कोई नाम लिया, नहीं, हरे नाम, इसलिए खास करके बताया हरे नाम, तो भगवान का अनंत कोटि नाम है, राम नृसिंह बराह आदि अनेक हजार हजार नाम है, कोई नाम भी ग्रहण कीजिए। अभी हम तेहरान से आ रहे हैं, उधर मुसलमान का देश है, तो कोई कोई ऐसा समझा जो हम लोग आपका कृष्ण का नाम क्यों ले, नहीं, हम बोलता है जो कृष्ण का नाम नहीं, भगवान का नाम अनेक है, आप क्या भगवान का नाम समझते हैं? वो बोलता हम लोग बोलते हैं अकबर है अल्लाह, अल्लाह का नाम लीजिए, बाकी भगवान का ही नाम लीजिए और कुछ नाम। हाँ, नाम नामकारी बहुला निज सत्व शक्ति, तो भगवान का नाम शास्त्र में जैसा है उसको ग्रहण कीजिए। हाँ, ग्रहण करके अपना जीवन को सफल कीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। और यदि हम लोग भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान को समझाने धर्म स्थान विश्वक से न कथा सुख भगवान को अपनाया नहीं तो फिर जीवन केवल विफल हुआ, समय वही केवल, ये शास्त्र का निर्देश है। तो कलयुग में ये बड़ा सरल है कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये कीर्तनीय सदा हरि सततं कीर्तयन्तं मां यतन्तश्च धीरव्रता, भगवद्गीता में ये सब समय हमारा नाम कीर्तन करते हैं। सततं सततं माने 24 घंटे, उठते बैठते सोते खाते पीते सब समय हरे कृष्ण, सततं कीर्तयन्तं मां यतन्तश्च धीरव्रता, नमस्संतश्च मां नित्यं नित्य युक्ता उपासते। ये सब शास्त्र का निर्देश है। तो शास्त्र विधि ग्रहण करने से सिद्धि होती है, नहीं तो सिद्धि नहीं, जो फिर समय है वही कबल। यदि शास्त्र विधि को हम लोग छोड़ देते हैं, न सिद्धि स्वभाव न थी जो शास्त्र विधि मुत्सिज वर्तती काम का, न सिद्धि स्वभाव न थी उसको कभी सिद्धि लाभ नहीं, न सुखांग न परांगति, और सुख तो होता ही नहीं है, परागति का बात ही छोड़ दी। तो शास्त्र में बताया है, निर्देश दिया है, चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया है कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवल, बड़ा सरल उपाय है ये, आप लोग से निवेदन है कि इसको ग्रहण कीजिए और उसको जपा कीजिए, जीवन आपको सफल हो। थैंक यू वेरी मच। काली भक्त माने फटाखा भक्त जन आ कीजिए, भक्त तत्व किसी न गणंग देही रूपंग देही रूपवती भाज्यांग देही जसो देही ये सब देही, और आम खूब मजा करी कालिक पालिक पुजो तादेर जन्य करा है थे जरा पाटा खावे एमने भिथा मांसो कसाई खानार मांस के आगवारे नरके जावे सेई जन्य काली पुजोर व्यवस्था करा है थे जे मासे एकबार हय अमावस्या अमावस्याते काली पुजो करले আর যাই হোক মায়ের প্রসাদ খাও, তো মাসে একবারই পাঁটা খাবার সুবিধা হয়, আর রোজ নয়, রোজ নয় যে ওই দোকানেতে একটা কালি রেখে দিয়েছে, এটা তো শাস্ত্রবিধি, শাস্ত্রবিধি হচ্ছে কালী পুজো করে খাও, এটা মানে রেস্ট্রিক্ট কর, এটা যে খুব একবার রাস্তা খুলে দিয়েছে আজকাল যেটা চলছে সব জায়গাতে, মুসলমানেরও আছে, মুসলমানের যে কোরবানি সেটা ওই বকরিদের সময় মসজিদে করে, এটা জীবহিংসা একেবারেতে নিষেধ শাস্ত্রতে সব জায়গায়। খ্রিস্টানরাও 10 commandments-এর ভেতর আছে দাও শাল না কীট, কে মানছে কি শুনছে যা তা করছে শাস্ত্র, সেই জন্য বলছে যশাস্ত্র বিধি মুসৃজ্য বর্ততে কামকাল না সিদ্ধিংসা বাহতি না সুখঙ্গ না পড়া, যারা শাস্ত্রবিধি ছেড়ে দিয়ে যা তা করে তারা সুখ তো কোনোদিন পাবেই না, সিদ্ধিও পাবে না, আর মুক্তির তো কোনো কথাই। শাস্ত্রেতে লোকে বলছে, শাস্ত্রেতে বলেছে লোকে ভবয়া আমি সমদ্দেশী বা নিত্যাস্তু জন্তু, জন্তু মাত্রেই তিনটে জিনিসে খুব আকর্ষণ আছে, কি না ববয়া স্ত্রী সংসর্গ করা, আর আমিষ, আমিষ মানে মাংস মৎস্যাদি ভোজন করে আমিষ, ববয়া আমিষ আর মদ্য সেবা, লিকা ড্রিঙ্কিং লিকা, এটা একটা সাধারণ আকর্ষণ আছে। তো এটা আবার শাস্ত্রেতে নির্দেশ করছে কেন না, নির্দেশ এই জন্য করছে যদি আকর্ষণটাকে ক্রমশ ক্রমশ কমিয়ে কমিয়ে ওটাকে নীল করে দেবে, এই জন্য শাস্ত্রেতে বলছে। বিবাহ করতে বলছে যে স্ত্রী পুরুষের সঙ্গ হতে আছে, বিবাহ করো না করো আছে, ওটা বিবাহ করতে বলছে কেন না, ওটাকে রেস্ট্রিক্ট করছে যে একটা স্ত্রী একটা পুরুষের মধ্যে থাক, তা নাহলে ব্যবচার হলে তো আর কিছু থাকবে সব নষ্ট হয়ে যাবে, ওটাকে রেস্ট্রেন করছে। যে পাঁটা তো এমনি বাজারে কিনতেই পাওয়া যায়, আবার কালী পুজো করে বলবার কি দাম, ওই রেস্ট্রিক্ট করছে যে অমাবস্যার দিনে কালী পুজো হবে, তার মানে রেস্ট্রিক্ট হয়ে গেল মাসে একবার। ওই ইচ্ছে করল বাজারেতে কষাইখানার মাংস কিনে নিয়ে এলো, মহাপাপ। হ্যাঁ, ওই রেস্ট্রিক্ট করতে 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 কোনোদিন ওটা শূন্য হয়ে যায়। আসল উদ্দেশ্যটা যে সেগুলো ছাড়তে হবে, কিন্তু এতে ছাড়বে না, ওই আস্তে আস্তে ছাড়বে, এই জন্যে শাস্ত্রের নির্দেশ। নমার কোশ্চেন, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ বলুন। গৌরী মঠের কথা এখানে আনবার কি দরকার? ওই সব বুদ্ধি দিয়ে ভগবানের কথা বোঝা যায় না। শোনো, এ ভগবান কৃষ্ণ ওই জন্য জন্ম কর্ম মে দিব্য, আপনি যে জন্মটন্ম বুঝে রেখেছেন বাবা মা জন্ম, ও জন্ম ন, এই জন্য বলছে জন্ম কর্মঞ্চ দিব্য যু যা না তি তো। শোনুন শোনো, ভগবানের জন্মটা ওইরকম না, আপনি যেরকম বলছে বাবার থেকে জন্ম হলো মায়ের থেকে জন্ম হলো তা ন, এই জন্য বলছে জন্ম কর্মঞ্চ মে দিব্য, দিব্যম বলবার কারি উদ্দেশ্যে, ওটা লৌকিক নয়, আপনি তো লৌকিক কথা বলছেন। হ্যাঁ, ওই তো বাবা মার জন্ম, পিসিমার জন্ম, মায়ের জন্ম, এইসব হচ্ছে লৌকিক। হ্যাঁ, তো সেইটা সেই জন্য বলছে যে ওটাকে জানতে হবে ভালো করে, জন্ম কর্মঞ্চ মে দিব্যম যু জানাতি তত্ত্ব। আমি যে বুদ্ধি নিয়ে বুঝে রেখেছি জন্মকর্ম, ওই সব বুদ্ধিতে চলবে না, দিব্যম এবং তত্ত্বত জানতে। এবং ভগবান নিজে বলছে যে মনুষ্যানাম সহস্রেশু কশ্চিৎ যদতি সিদ্ধায় যততাম বিসিদ্ধানাম কশ্চিৎ বেত্তিমাম তত্ত্বত। তত্ত্বত বুঝতে হবে, আর সেই তত্ত্বত বোঝাটা সাধারণ না, বলছে লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে কেউ সিদ্ধি লাভ করে, আর যততাম বিসিদ্ধানাম এই সিদ্ধি লাভ যারা করি তাদের মধ্যে কেউ জানে তত্ত্বত। ও আপনি বুঝে রেখেছেন যে মায়ের পেট থেকে যেমন ছিল কৃষ্ণ এরম জন্মেছে রাম ওইরাম ন, সেটা বুঝতে হবে, সেটা তাত্ত্বিক বুঝতে হবে, এবং সে তাত্ত্বিক বুঝবার রাস্তাটাও ভগবান বলে দিয়েছে, ভক্তা মাম অভিজানাতি যাবান যাচ্ছামি তত্ত্ব, ওই তত্ত্ব তো ভগবানকে তত্ত্ব তো বুঝতে হবে, যা আমরা বুঝে রেখেছি ওইরকম বুঝে হবে। এবং তত্ত্ব বুঝবার জন্যে যে তত্ত্ব দর্শী নয়, ভগবান বলেছেন তদ্বৃদ্ধি প্রণিপাতে না পরিপ্রশ্নেন সেবয়া উপদক্ষান্তি তদ জ্ঞানম, জ্ঞানী ন তত্ত্ব দর্শী, এই তত্ত্ব কথাটা আগে বুঝতে হবে, ওইরকম নিজের মন গড়া বুঝলে হবে, এবং সেটা জানতে হবে তদ্বৃদ্ধি, সেটা জানো কি করে প্রণিপাতে না, আগে নিজের যে বিদ্যা বুদ্ধি আছে সেটাকে প্রণিপাত করতে হবে, প্রকৃষ্ট রূপে নিপাত করে দিতে হবে, এটা হচ্ছে আসল কন্ডিশন, যে আমি খুব জেনে রেখেছি বুঝে রেখেছি বাস ঠিক হয়ে গেল না, তদ্বৃদ্ধি প্রণিপাতে, হ্যাঁ প্রকৃষ্ট রূপে না নিপাত করে দাও, প্রণিপাতে না পরিপ্রশ্নে সেই ভয়া সেবা করতে হবে, পরিপ্রশ্ন করতে হবে, প্রণিপাত করতে হবে, এইরকমভাবে করলে যে জ্ঞানী তত্ত্বদর্শী যে তত্ত্ব জানে সে বুঝিয়ে দেবে, নিজের মন গড়া বুঝলে হবে, যেমন শাস্ত্রের নির্দেশ আছে সেরকম। ওই জন্য বলছি যে তত্ত্বদর্শীর কাছে যেতে হবে, ওইরম ভাবে বুঝলে হবে, ওইরম বুঝলে হবে। এটা স্পেকুলেশনের জিনিস না। অথাপিতি দেব পদাম বিজুদ্ধম প্রসাদ লীশান গৃহীত ওই জানাতি তত্ত্বম প্রসাদ লীশ গৃহ গৃহীত, যারা ভগবানের সামান্য একটু প্রসাদ পেয়েছে তারা তত্ত্ব তো বুঝতে পারে। জন্ম কর্মাংশ দিব্যম যু জানাতি তত্ত্ব, ভগবানের তত্ত্ব জ্ঞান হলে সে তো মুক্ত হয়। তত্ত্বাদেহং পুনর্জন্ম নেয়েছি মামি।